Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tav Tattvam Na Janami. कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यो वसौ सो अहं यजामि ॐ शांति. मांडुक्य उपनिषद, जिस पर गौड़ पादाचार्य जी ने व्याख्यात्मिक कारिकाओं की रचना की और अद्वैत सिद्धांत के आधुनिक संस्थापक आदि प्रचारक श्री शंकराचार्य जी ने भाष्य के माध्यम से उन कारिकाओं और मूल मंत्रों के रहस्य को शब्दों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयत्न किया. मांडुक्य उपनिषद के संबंध में ये बात प्रचलित है सभी दश नाम संन्यास परंपरा में कि मोक्ष के लिए यही एक उपनिषद और इस उपनिषद का भी पहला मंत्र ही पर्याप्त है. एक बात आपसे परंपराओं की कह लूं कि शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना की थी. चार मठों का अर्थ है प्रत्येक मठ एक एक वेद का संरक्षक है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद एक एक मठ से जुड़े हुए सन्यासी जो मठ का आचार्य है उसे शंकराचार्य कहते हैं. कि ये श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं, ये जगन्नाथपुरी के हैं, ये वहां के. जो मठ के शंकराचार्य हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो अपने वेद के पारंगत विद्वान, जो वहां का वेद है उनको कंठस्थ है, उस वेद की एक एक बात से वो परिचित है और अपने पास रहने वाले शिष्यों को वो उस वेद का अध्ययन करवाते हैं. संन्यास परंपरा में जो लोग आते हैं इनको दश नामी कहते हैं. इनके दस नाम, हर एक के नाम के आगे, किसी के नाम के आगे गिरी लिखा होगा, किसी के नाम के आगे पुरी लिखा होगा, किसी के नाम के आगे सरस्वती लिखा होगा, किसी के आगे पर्वत, तीर्थ, आश्रम, ये नाम के आगे लिखे रहते. इनमें से इन चार मठों के साथ ये सन्यासी जुड़े हुए हैं. दस सन्यासी, मठ चार हैं. तो इस तरह से तीन नाम वाले एक मठ से जुड़े हुए हैं, तीन नाम वाले दूसरे मठ से जुड़े हुए हैं, दो नाम के और मठ से और दो के और. इसमें जो गिरी हैं, गिरी नाम के सन्यासियों का मठ ज्योतिर्मठ है. इनका वेद अथर्ववेद है और इनके उपनिषद मुंडक उपनिषद है. मांडुक्य उपनिषद भी इसी अथर्ववेद से ही संबंधित है, लेकिन वो गिरिनामा जो सन्यासी होंगे उनके नहीं, वो पर्वत उनके नाम के आगे लगा होगा और तीर्थ उनके नाम के आगे लगा होगा। अथर्ववेद की तीन उपनिषदें बहुत प्रसिद्ध हैं, मुंडक, मांडूक्य और प्रश्न उपनिषद। ये तीनों ही अथर्ववेद से संबंधित हैं। तीनों के ही मठ का नाम ज्योतिर्मठ है, इनके संप्रदाय का नाम आनंदवार। ये संप्रदाय भृगु इनका गोत्र होता है, बद्रिका इनका आश्रम है, अलकनंदा इनका तीर्थ है, नारायण इनका देवता है, पुण्यगिरी इनकी देवी। ये आराधना के क्रम है। किसी समय ये अपेक्षित होता था कि जिस स्वामी के नाम के आगे गिरी लिखा है या पुरी लिखा है या भारती लिखा है या तीर्थ लिखा है, तो उसके नाम से ही ये बात सिद्ध हो जाती थी कि ये प्रश्न उपनिषद का अध्ययन करते हैं और ये इस उपनिषद का अध्ययन करते हैं, ये उस उपनिषद का अध्ययन करते हैं। चार ही हमारे महावाक्य हैं, एक एक मठ से संबंधित एक एक महावाक्य है। ये जिस आश्रम से जिस मठ से मेरा संबंध है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो महावाक्य है इसका चिंतन करना, इसका स्वाध्याय करना, इसी के इर्द गिर्द अपने चिंतन को अपनी वृत्तियों को लेकर उधेड़ बुन जो कुछ भी करनी है अयम आत्मा ब्रह्म के इर्द गिर्द। और मुंडक उपनिषद को, मांडूक्य भी उसी का है, लेकिन मांडूक्य को जिनके नाम के आगे सागर लिखा होगा वो मांडूक्य उपनिषद को पढ़ाएंगे या वो पढ़ते हैं दिन रात। तो ये किस्म के नियम थे हमारी परंपरा के। आज वो ऐसा कुछ नहीं है। आज कोई भी किसी का भी कोई नाम है उनको इन बातों का बहुत ज्ञान नहीं है, ना ही अब उपनिषदों के अध्ययन की बात रह गई और ना ही वेदों का उस ढंग से अध्ययन हो रहा है कि जो मठ के शंकराचार्य हैं वो उसी वेद के बहुत प्रकांड विद्वान हों। क्योंकि कोई आधुनिक युग की बात कह लो कि कोई राजनीति में फंस गए, कोई इसमें चले गए, कोई आश्रम बनाने के चक्रों में, तो ये विद्याएं पीछे रह गई। वैसे ये बात केवल कि नामों के इसलिए रखे गए थे जिससे ये पता लगे कि ये इस उपनिषद का, इस शाखा का, इस वेद का। जो व्यक्ति भी उस वेद में, क्योंकि आगे जो गृहस्थ थे, कोई भी गृहस्थ ऐसा नहीं था जिसका संबंध किसी न किसी वेद की किसी न किसी शाखा से ना हो। ये जो कर्म कांड होते थे कि अब श्राद्ध आ गए हैं, अब ये आ गया है, अब नवरात्रे आ गए हैं, अब ये करना है, जो गृहस्थों के काम थे, तो गृहस्थ भी वेदों से बंधे हुए थे। वैदिक परम किस वेद की कौन सी परंपरा को कौन से गृहस्थ निभा रहे हैं ये भी बना हुआ था। तो उससे सन्यासियों का, गृहस्थों का, मठों का, मठ के आचार्य का एक संबंध बना रहता था, आपस में एक रिश्ता सा बना रहता था और उस मर्यादा का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए दैनिक जीवन लोग जीते थे, जिससे जीवन की समस्याएं लगभग ना के बराबर थी। वो छूट जाने से थोड़ा व्यतिक्रम हुआ, जो भी आज हम देखते हैं कि ठीक तरह से ना तो सांसारिक जीवन बहुत संतुलित सा है, ना ही आध्यात्मिक जीवन। कारण उसका यही रहा कि हम अपनी उन परंपराओं को जो बड़ी सुस्वस्थ थी और केवल इसलिए बनी थी कि इसमें के अंतर्गत हम अध्ययन करते रहें और अपने जीवन का स्वयं विश्लेषण करते हुए, अपनी बुराइयों को स्वयं सुधारते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। ये जो उपनिषद जिसको लेके हम बात कर रहे हैं, हर एक उपनिषद में शुरू में अधिकारी उसको उपनिषदों की परंपरा में अनुबंध चतुष्टय ऐसा कहा जाता है कि अधिकारी कौन है इसका, विषय क्या है इसका जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रयोजन क्या है इसका, और अधिकारी का और विषय का परस्पर संबंध क्या है। तो इसको कहते थे अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। इन चार चीजों को जानकर जब हम अध्ययन करते थे तो उसमें सफलता मिलती थी। तो ये अनुबंध चतुष्टय सभी उपनिषदों के और विशेषकर जो प्रकरण ग्रंथ हैं उन पर ये जरूर लागू होता है। प्रकरण ग्रंथ का अर्थ होता है अध्यात्म की किसी एक बात को लेकर उसी की व्याख्या करना। देखो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ, इसमें से हम किसी एक को लें और उस एक की पूर्ति के लिए भी किसी एक ही बात को लेकर चलें तो उसको प्रकरण कहते हैं, प्रकरण ग्रंथ। उसमें सभी पहलुओं पर विचार नहीं होता, जैसे इस उपनिषद में जो हमारे सामने है केवल ओम का विचार है और किसी बात का नहीं। इसमें ओम को लेकर ही, ओम के महत्व को और ओम के माध्यम से कैसे हम अनुभूति करते हैं ब्रह्म की, उसी की इसमें व्याख्या है। तो इसमें एक ही बात को लेकर उसी को बार बार वो दोहराएंगे, उसी को बार बार समझाएं। तो जिसमें एक ही बात को लेकर बात की जाती है उसको प्रकरण ग्रंथ बोल देते हैं। तो ये वाला मांडुक्य उपनिषद प्रकरण ग्रंथ है जिसमें ओंकार की व्याख्या है, जिसमें ओंकार को ही आधार मानकर समझाया गया है कि कैसे नाम से और नामी दोनों एक होते हैं। ये नाम है ओम और जिसका नाम है वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म और ओम दोनों एक ही हैं। ओम कहने से ब्रह्म का ज्ञान हो या ब्रह्म कहने से ओम का, बोलना होगा तो शब्दों के माध्यम से बोलेंगे, चिंतन करना होगा या ध्यान करना होगा तो उस समय शब्द तो रहते हैं ध्यान में भी, लेकिन वो शब्द सूक्ष्म होते हैं और वृत्त्यात्मिक होते हैं, उन वो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात ब्रह्म क्या है जब ये बात आएगी तो अगर इस पर चिंतन करोगे तो शब्द कम रह जाएंगे, वृत्तियों का खेल ज्यादा होगा, क्योंकि व्यापकता, अनंतता, ये शब्द हैं जो इसको समझाते हैं कि ब्रह्म वो है जो जिसका अंत नहीं, आदि अंत नहीं, वो है जो व्यापक है, वो है जो हर एक में ही व्यापक है, हर एक में समाया हुआ है, ऐसे ऐसे ये शब्द हैं। लेकिन जब इसका चिंतन करोगे बैठकर तो फिर शब्द साथ छोड़ जाते हैं, आप व्यापकता का एक अनुमान लगाते हैं, कल्पना है कि व्यापक किसको कहते हैं, कितना व्यापक है। हमारे पास जो बहुत बड़ी से बड़ी व्यापकता के एक उदाहरण है वो आकाश है, इसलिए बार बार शास्त्रों में आकाश को दोहराया गया कि आकाशवत व्यापक, आकाश जितना उसका आदि अंत नहीं, आकाश में ही सब समाये हुए हैं, आकाश सब में होता हुआ भी सबसे अलग है, ऐसी ऐसी बातें आकाश को समझाते हुए कहते हैं। और इसी को ही लेकर जब आप ध्यान में ब्रह्म का ध्यान करने बैठते हैं तो इन्हीं के इर्द गिर्द आप घूमते रहते हैं। ओम के माध्यम से वो ये बतलाएंगे हमको कि जब भी ध्यान में बैठते हैं तो बाहर आकाश को नहीं ढूंढना, क्योंकि जो आप बाहर आकाश को ढूंढ रहे हो वस्तुतः आंखें तो आपकी बंद हैं और आप आकाश की कल्पना कर रहे हो। वो जो कल्पना कर रहे हो वो आप अपने मन में ही कर रहे हो, अपने शरीर के अंदर ही आकाश को देख रहे हो। तो वो ये बात बतलाएंगे कि बाहर मुखता की बजाय आप अंतर्मुखी हो तो आपको वो रहस्य मिल जाएगा कि कौन है जो इन सब बाहर की चीजों को शक्ति दे रहा है। अगर अंदर से वो खत्म हो जाए तो ना आकाश रहेगा, ना वृत्तियां रहेंगी, ना कोई कुछ रहेगा। तो इसलिए ओम को वो एक किस्म की आप समझ लो कि जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर, जो समुद्र में गोता लगाते हैं, गहरे में जाते हैं और गहरे में जाकर वो जल संपदा, समुद्र के जो वो हैं, मोती भी ढूंढ के लाते हैं, हीरे, जो और भी अच्छी से अच्छी वस्तु। तो जो गहरे में जाते हैं बहुत, वो एक बारीक डोर उनके बंदी रहती है कमर में और वो डोर बस उसके उनको बचाए रखती है, अखीर तक पहुंचा भी देती है और उनको बाहर आने का रास्ता भी बतला देती है। तो ओम असल में वही एक डोर है जिसको अपनी वृत्ति में लेकर गहरे में गोता लगाना है। ये हमें वहां तक पहुंचा भी देगा और उसके नजदीक भी ले जाएगा और हमें डूबने से भी बचा लेगा। अर्थात अगर ओम का चिंतन, ओम का ध्यान और ओम का जाप, तीनों हमारे सभी शास्त्रों में, सिर्फ ओम ही एक ऐसा शब्द है कि जिसका ध्यान भी है, जिसका चिंतन भी है और जिसका जाप भी है। ये अपने आप में एक मंत्र भी जपने के लिए और ये अपने आप में पूरा एक व्याख्या के लिए ग्रंथ भी है। ओम को ही लेकर अगर इसकी व्याख्या की जाए तो कितनी भी दिन करते रहो, कितने भी वर्ष करते रहो, ये कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि अनंत का प्रतीक है तो स्वयं भी अनंत है, इसका अंत नहीं। जो कोई भी अनंत को बतलाएगा या उसकी बतलाने वाला होगा, क्योंकि अनंत को शांत तो बतला नहीं पाएगा, जिसकी अपनी सीमाएं हैं वो असीम को नहीं बतला सकता, असीम को बतलाने के लिए भी असीम ही चाहिए। तो इसीलिए ओम का जितना जितना हम विचार करते चले जाएंगे उतना उतना ये हमें नजर आएगा कि इसकी व्यापकता कितनी है। तो ओम को लेकर ही इस उपनिषद में केवल चिंतन किया गया है, विचार किया गया और उसके लिए उन्होंने बहुत संक्षेप में ये बात बतला दी कि इसके चिंतन में, इस अनुभूति में जो वैराग्यवान है वही अधिकारी। इसका अधिकारी कौन है? वैराग्यवान, जिसके जीवन में वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ होता है जिस चीज की जरूरत नहीं उसकी चाहना ना करना, बस इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब होता है अनावश्यक को इकट्ठा नहीं करना। वो अनावश्यक चाहे विचार हो, चाहे वस्तुओं हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज हो। तो अनावश्यक से बचने का नाम त्याग है। जो अनावश्यक से बचेगा वही इस ग्रंथ को या इस विधा को ठीक तरह से समझ पाएगा। अनावश्यक से बचने का या अनावश्यक के त्याग का अर्थ केवल इतना ही है कि पहले बहुत गंभीरता से ये विचार कर लो कि मुझे आवश्यकता किस चीज की है, तभी तो पता लगेगा अनावश्यक क्या है। नहीं तो अनावश्यक का पता ही नहीं लग सकता अगर हमें आवश्यक का पता ना हो। तो इस बात पर स्वयं ये विचार करना होगा कि जीवन में अत्यावश्यक क्या, कौन सी वो चीज है जो बहुत जरूरी है। कोई सिद्धांत भी यही है कि जिस चीज की हमें जरूरत है और जिस चीज की हमें इमीडिएट नीड, जिसको हम कहते हैं, जिस वस्तु की हमें तुरंत जरूरत है, इस समय जरूरत है, उसी की चाहना में हमें सफलता मिलेगी। जो मुझे अभी चाहिए, जिसके बिना मुझे बेचैनी है, वही तो मेरी आवश्यकता है। तो मुझे उसी का ही चिंतन करना होगा, उसी की बातें करनी होगी, तभी मुझे उसकी उपलब्धि होगी। तो इमीडिएट नीड, हमारी अभी की चाहना, अभी की आवश्यकता, वैसे तो जब भी किसी से पूछेंगे तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपको यह कहे कि मेरी इमीडिएट नीड ब्रह्म से मिलना है, कि उसके बिना मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं, कि तुरंत मेरे जो प्राण हैं वो निकल जाएंगे, नहीं तो मुझे ब्रह्म मिल जाए। अभी भी किसी से वैसे भी पूछा जाए कि क्या आपको चाहिए, तो कोई कह देगा नहीं कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है। कोई कह देगा चाय का प्याला ले आओ, बस वो ठीक है। कोई कुछ और कह देगा, जो जो भी जिसको ठीक लग रहा है, और जो नहीं है वो कहेंगे कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मतलब उन्हें ना ब्रह्म चाहिए ना संसार चाहिए, वो इस तरह से भी अपना टाइम लोग व्यतीत कर रहे हैं। तो जिस चीज की हमें जरूरत नहीं वो हमें मिलेगी भी नहीं, तो जिस चीज की हमें आवश्यकता है उसे ही आवश्यक कहेंगे, बाकी अनावश्यक। अनावश्यक का ना सोचा जाए ना इकट्ठा किया जाए, इसी को त्याग कहते हैं, इसी को विराग कहते हैं। विराग का मतलब होता है अनावश्यक को छोड़ देना, और अभ्यास का अर्थ होता है आवश्यक के लिए प्रयत्न करना। यही वैराग्य और अभ्यास। भगवान ने गीता में भी ये बात कही और कई जगह पर भी हर बात में यही कहते हैं कि सफलता के लिए वैराग्य और अभ्यास की जरूरत है, ये दो चीजें हों तो सफलता मिलेगी। तो वैराग्य का मतलब है अनावश्यक की ओर ध्यान ना देना, अभ्यास का मतलब है आवश्यक का बार बार चिंतन करना, उसी के लिए प्रयत्न करना, ताकि हमें सफलता मिले। तो जब भी आप विचार करेंगे, देखो ऊपरी सतह पर विचार करने पर तो लगेगा कि जैसे हमें भौतिक चीजें चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए। जिसका कोई समस्या है इस समय की, वो कहेगा ये समस्या हल हो जाए, ऐसी सब बातें। लेकिन वास्तविकता ये है कि चाहने में हम सब के सब शाश्वत सुख को चाहते हैं। चाहने को जो हमारी चाहना है वो वस्तुतः हर समय सुखी रहने की, कि हर समय सुख में रहें, हर समय आनंद में रहें। शास्त्र का अगर सहारा लें तो शास्त्र में उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ, आनंद भी उसके लिए आता है, सुख भी उसके लिए आता है, प्रसन्नता भी उसके लिए आती है। लेकिन उपनिषदों के ऋषियों के सामने उसे रस कहकर पुकारा गया, रसो वै स, वो रस रूप है, वो रस है जिसको हम चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जीवन में रस हो, जीवन रसमय हो, ये हर एक की असली चाहना। ये जीवन रसमय कैसे हो, बाकी ये उसके साधन है कि खाने की कोई चीज मिल जाए, पहनने की कोई चीज मिले, ये साधन है रस को उद्वेलित करने की। इनमें रस नहीं है, रस तो हमारे अपने अंदर ही है, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए, देखो किसी का मन है कि अमुक तरह का कपड़ा मुझे मिले मैं पहनूं, तो जब कपड़ा पहन लिया हमने तो कपड़े को ना तो खाया है हमने के मुंह से खा के देखा कोई रस आया, ना ही उसको कोई और है बस, लेकिन जीवन में एक प्रसन्नता आ गई उसको पहनकर। तो इसका अर्थ है कि वो रस कहीं गहरे में हमारे अपने ही अंदर था, उस हमारे चाहना ने जो हम चाह रहे थे उसने वो थोड़ा उजागृत कर दिया। जैसे अग्नि माचिस में ही होती है, लेकिन माचिस की तीली को रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती, वो बाहर से नहीं आई, वो उसी में थी। ऐसे ही वो रस कहीं बाहर से नहीं आता, अपने ही अंदर है, लेकिन बाहर की वस्तुओं से वो थोड़ा प्रकट हो जाता है, महसूस हो जाता है। तो विचार यही करना होता है कि वास्तविक में हमें चाहिए क्या, रस चाहिए कि रस को प्रकट करने वाली चीजें चाहिए। जब हम रस को प्रकट करने वाली चीजों की तरफ जाते हैं तो वो रस को भूल जाते हैं, हम के उद्देश्य क्या था, लेकिन उन्हीं की तरफ लगे रह जाते हैं, जो वस्तुएं जो साधन है उनमें उलझ जाते हैं, साध्य को भूल जाते हैं। जैसे जितने भी शब्द हैं, कोई भी आप शब्द बोलेंगे, हर एक का अंतम उद्देश्य यही होता है, जितनी भी हम बातें करें अंतम उद्देश्य रस तक पहुंचना ही है। शब्दों का भी यही अभिप्राय है कि वो हमें रस तक पहुंचा दे, लेकिन उस रस को भूलकर फिर हम शब्दों में ही उलझ जाते हैं, शब्दों में ही, शब्दों को ही आगे पीछे करना, शब्दों को रटते रहना और उन्हीं को दोहराकर थोड़ी देर के लिए मजा लेना, वो चाहे गीत के माध्यम से हो चाहे कविता के माध्यम से हो, ये शब्दों का खेल। तो जो शब्दों का असली अभिप्राय था उसको छोड़कर हम शब्दों में ही उलझ गए। रुपया पैसा ये साधन हो सकता है सुख का, लेकिन अपने आप में ये सुख नहीं है, लेकिन उद्देश्य को भूलकर इसी को ही महत्व दे देना, वहां पर हम बहक जाते हैं, वहां पर गलती हो जाती। अगर उद्देश्य हर समय ध्यान में रहे कि उद्देश्य तो रस है, उद्देश्य कुछ नहीं और कुछ नहीं, अगर उद्देश्य रस है तो फिर जिन्होंने उस रस की अनुभूति की वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उस रस की अनुभूति किसने की। जब ये बात आएगी तो फिर आप कहेंगे उस रस की अनुभूति महात्मा बुद्ध ने की, उसकी अनुभूति मीरा ने की, उसकी अनुभूति नानक ने की। हम सब इन लोगों के नाम लें,